ओम शांति। बाबा का होमवर्क सबको याद है क्या था? माताएं बताएंगी, ठहरो हैं? स्वराज्य अधिकारी और व्यर्थ से मुक्त समर्थ। दो मास लिए ये बाबा ने काम दिया और एक साल के लिए क्या दिया? फरिश्ता बनना चालू है। एक साल लंबा काम है ना, रोज याद दिलाना पड़ेगा अपने को। एक साल लंबा समय है, थोड़ा भूल जाएंगे, नए नए काम मिलते जाएंगे और रोज भी हमें नए नए काम होते हैं तो हमारे स्थूल काम इस अलौकिक काम को भुला भी देते हैं। भूलना नहीं है, इसकी धुन अपने अंदर रखनी है। तो क्या मिलेगा बाबा से? इनाम। और इनाम वास्तव में एक्स्ट्रा मदद के रूप में भगवान के द्वारा गया दिया गया सबसे अच्छा इनाम क्या? यही जो अब आपने बताया, उसकी एक्स्ट्रा मदद। हम अगर बाबा के द्वारा दिए गए होमवर्क को करते हैं, और दूसरी बात जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे, हमारे जीवन में चारों सब्जेक्ट का बैलेंस रहे, तो अगर हम बाबा के कार्यों में सहयोग देते हैं और बाबा के द्वारा दिए गए काम को करते हैं, टीचर है ना, वो खुश होगा ना स्टूडेंट काम करें। बाप ने यज्ञ रचा है, उसके यज्ञ में हम बहुत मदद करें तो वो खुश होगा, सदगुरु खुश होगा हमसे। तो सहयोग के रिटर्न में उसका हमें बहुत सहयोग मिलेगा। कब हमें उसके सहयोग की जरूरत है? रोज। परिस्थिति आ जाए, शरीर पर कुछ आ जाए, एक तो वर्तमान में हमें इस तरह बाबा के सहयोग की जरूरत रहती है। भगवान का हाथ हमारे सिर पर हो तो क्या होता है? सहज पार। दूसरा, हमें उसके सहयोग की जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा। कब? विनाश काल में। जब संसार की स्थिति कैसी होगी हम सोच भी नहीं सकते, अभी उसकी किसी के पास कल्पना भी नहीं हो सकती। सारी धरती खाली होनी है, जो कुछ दिखता है वो नहीं रहेगा। सोच लें संसार का क्या हाल होगा। मोह जिनको है, पदार्थों में आसक्तियां हैं, वो सब छूटेंगे ना, कोई अपना नहीं रहेगा, सब छूट जाएंगे। कोई रोए या दुखी हो, भगवान के बच्चे हो या रावण के बच्चे हो, सबका सब कुछ छूटेगा। तो विनाश काल में बाबा के सहयोग की बहुत जरूरत रहेगी। बाबा ने मुरली बता दिया है, जो योगयुक्त रहे होंगे लंबा समय, बाबा उन्हें विनाश काल में साक्षात्कार में इतना बिजी रखेगा, नए नए सीन दिखाने में, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कब विनाश हो गया, क्या क्या हो गया दुनिया में। तो विनाश काल में बाबा के सहयोग की बहुत जरूरत पड़ेगी। और तीसरे, द्वापर युग से भक्ति में बहुत सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हम पुकारेंगे जानेंगे नहीं, लेकिन उसका उन आत्माओं को सहयोग मिलेगा जिन्होंने संगम युग पर उसे सहयोग दिया है। बहुत सारे भाई बैठे हैं, माताएं भी, जो बाबा के यज्ञ में सेवा करने बहुत आती हैं, मदद करती हैं। वहां भी तन मन धन से आप मदद करते होंगे ही निश्चित रूप से, इसका रिटर्न बहुत मिलता है। बाबा थोड़े को ज्यादा लेता है, कोई उसको मुट्ठी भर दे और वो उसे बड़ा स्वीकार करता है। आज ही मुझे कोई सुना रहा, कोई अपनी किताबें निकली है ना आजकल, ये उसमें वो पढ़ रहा था कि बाबा के समय कोई माता एक छोटी सी इतनी सी गठरी बांध के चावल और गुड़ लाई। उसके टीचर को लज्जा, ये बाबा को कैसे दिखाएं, कैसे देंगे, ये उसने रख लिया। लेकिन वो तो ऊपर से देख रहा था ना, उसने उसको मिलते कहा, बच्ची वो जो माता लाई थी चावल और गुड़ वो कहाँ है? उसको बेचारी को लज्जा आ गई और वो लाई और बाबा ने कहा इसे किचन में अभी दो, भोली को कहो इसके मीठे चावल बनाए, सब चावल में इसको भी डाले, मीठे चावल बनाए, सबको खिलाए। तो देखो ये भगवान की भावनाओं को स्वीकार करने की लीला कहें गति है। एक और बहुत अच्छी बात मैं सुना, वो भी कहीं लिखी किसी ने, कोई माता ने अपने घर में दिल्ली में पपीते का पेड़ बोया और संकल्प किया कि पहले जो पपीते होंगे ना उनमें से मैं बाबा को ले जाऊंगी, मधुबन में जाऊंगी। जल्दी पपीता लग जाता है, पक गया पपीता, ले आई वो मधुबन में, बाबा को दिया, बहुत प्यार से सब सुनाया, मैंने ये पपीता ऐसे ऐसे संकल्प किया था लाई। बाबा मामा दोनों थे, काटा, खाने लगे, उसको नहीं खिलाया। अब उसको संकल्प हो रहा, बाबा मामा बहुत प्यार से पपीता खा रहे हैं, उसको संकल्प हो रहा मुझे नहीं खिला रहे, पूछ भी नहीं रहे। उसने कह ही दिया जब बाबा नहीं खिलाया कि बाबा मुझे भी तो थोड़ा सा खिलाओ, तो उसने कहा नहीं बच्ची तुम्हें और कुछ खिला देंगे, ये तो आप बाबा के लिए लाई हो ना, तो इसको मामा बाबा ही खाएंगे। लेकिन उससे रहा नहीं गया कि शायद बहुत ही आनंद आ रहा है, मैं भी आनंद ले लूं। पर उसकी जिद पर बाबा ने एक पीस उसे भी दे दिया। उसने जो खाया क्या होगा, पपीता बहुत कड़वा था, वो उसे तो खाया नहीं गया, थू थू करने लगी। उसको समझ में आया, समझ गए ना कितनी बड़ी बात, बाबा और मामा कड़वे पपीते की कड़वाहट को न देखकर, उसमें भरे हुए प्यार और भावना को देखकर खा रहे थे, इसलिए उसे खिलाना नहीं चाहते थे, उसे पता न चले। अब वो तो रोने लगी। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, जब आपने संकल्प किया था तब से ही बाबा ने ये स्वीकार कर लिया, तुम प्यार से लाई तो बाबा को तो खाना ही था, तुम्हारा स्वीकार हो गया। ये बहुत बड़ी चीज है ना, इसको केवल भगवान या ब्रह्मा और जगदम्बा ही कर सकते हैं। किसी गुरु को दे देती तो शायद वो उसके ऊपर फेंक देता, कड़वा लाइए तुम ही खा इसे। तो हम अपने जीवन में चारों सब्जेक्ट का बैलेंस रखें, और बहुत अच्छी बात है, सभी चिंतन करेंगे भगवान के दिल को जीत ले इस समय। याद होगा आपको बाबा ने बोला था, अभी की मुरली है, बाप का दिल तख्त नसीन कौन बनते हैं, एक जो अपने दिल में बाप को बैठाते हैं, दूसरा जो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, और तीसरा जिनकी स्थिति श्रेष्ठ है। भगवान पे के दिल पे कोई ऐसे ही तो नहीं बैठ जाएगा ना कि बाबा मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, ये वो कुछ कुछ करके, जैसे लोग यहाँ दुनिया में करते हैं, दूसरों के दिल पे चढ़ने के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं ना। बाबा तो सत्य है और वो सत्य को ही स्वीकार करता है, और सत्य केवल सत्य बोलना नहीं, सत्य स्थिति, जिनकी श्रेष्ठ स्थिति होगी, जो मास्टर सर्वशक्तिवान होंगे, जिन्होंने अपने दिल में बाबा को बसाया होगा, माना योग युक्त, वो बाबा के दिल तख्त नसीन होंगे। तो हम सोच लें, हमें इस समय भगवान को राजी करना है, सहज राजी हो रहा है, भोलानाथ बनकर हमारे सामने आ गया है, कई चीजों पर राजी होता है। ये तो बाबा ने बड़ी बातें कही तीनों, लेकिन भोलानाथ राजी होता है भावनाओं पर, हम उसके यज्ञ के लिए थोड़ा भी करें राजी होता है वो, देखते हैं ना। नीचे बाबा आता है, बार बार कहा है बाबा ने, सभी जो बाप को स्नेह करते हैं उसमें सब पास है। और 18 जनवरी पे तो बहुत अच्छे शब्द बोले थे, आप सभी के स्नेह को आज बाप ने स्वीकार किया। सुख देने वाली बातें हैं ना ये, आत्मा को सुख देती हैं। प्यार के बदले में प्यार मिलना और स्वीकार कर लेना कितनी अच्छी बात है। तो हमारा बाबा से बहुत प्यार है, जो बाबा हमेशा सर्टिफिकेट देते हैं, प्यार की अब निशानी है, जो बाबा कह रहे हैं वो हम करें, इनाम मिलता रहेगा जन्म जन्म, मदद मिलती रहेगी जन्म जन्म, परिस्थितियों में उसका साथ मिलता रहेगा, उसके बुलावे पर हम आ जाएं तो हमारे बुलावे पर वो आता रहेगा। भक्ति में जब भी बुलाएंगे तुरंत आ जाएगा, बाबा ने साकार में ही बोल दिया है, मैं तुम्हें भक्ति में भी मदद करता आया हूँ। मदद मिलती है उसकी, सबको अनुभव है, अगर भक्ति में मदद न मिलती तो भक्ति दो युग न चलती। भक्ति में अगर जरा भी शक्ति न होती तो भक्ति दो युग नहीं चलती, जल्दी समाप्त हो गई होती। तो उसमें भी पूरे द्वापर युग तो संपूर्ण सत्यता रही ना, कलयुग में भी बहुत सत्यता रही। अब आके थोड़े साल पहले से उसमें मिलावट हुई, दिखावा हुआ, बिगड़ गया सारा भक्ति का खेल, वो भी बिजनेस बन गया एक। तो हम बाबा को राजी करें, चार सब्जेक्ट हैं, चारों में फुल मार्क्स लेने वाले, अधिक से अधिक मार्क्स लेने वालों की डिग्री आगे होगी ना, लौकिक में भी पढ़ाई में। किसी के मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नंबर आ जाएं, लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल ही हो जाए, फेल माना जाएगा ना। स्वामी रामतीर्थ के साथ ये हुआ था, मैथमेटिक्स में बहुत होशियार था, तब सारे पंजाब की एक ही यूनिवर्सिटी होती थी, दिल्ली तक, पंजाब हरियाणा एक था, लाहौर दूर दूर, अब का जो पाकिस्तान में है ना पंजाब, वो भी इतने बड़े एरिया में एक ही यूनिवर्सिटी होती थी। एमए में उसने टॉप किया यूनिवर्सिटी को, लेकिन समस्या आ गई एक वाइस चांसलर के सामने, प्रोफेसर के सामने, कि सबसे ज्यादा नंबर तो राम तीर्थ के हैं, नाम उसका था तीर्थ राम, लेकिन वो इंग्लिश में फेल है। कैसी दुविधा हो गई उनके लिए, इंग्लिश में वो फेल है, मतलब थोड़े ज्यादा कम नंबर हैं, एक दो नंबर कम हो तो ग्रेस दे के पास करा देते हैं ना, लेकिन थोड़े ज्यादा कम हैं, 5-7 नंबर कम हैं। अब क्या किया जाए, मीटिंग होती रही कि भाई बहुत गरीब था वो, बहुत गरीब घर से था, उस पे सबको प्यार भी बहुत था, दया भी आ रही थी कि सारी यूनिवर्सिटी में इसके सबसे ज्यादा नंबर हैं। उन दिनों एमए करने वाले कितने लोग होते होंगे आप समझ सकते हैं, अब से लगभग 100 साल पहले 125 साल पहले एमए, अंग्रेजों के राज में एमए तक पहुंचना उसका नाम हो जाता था, उसके नाम के आगे वो डिग्री भी चलती थी नाम में, हरदयाल एमए, हरदयाल एक बहुत प्रसिद्ध हुआ, हरदयाल एमए बी ए ही करते थे अधिकतम लोग, ज्यादा जो पहुंच सकते थे बीए तक, बाकी हाई स्कूल उसके आगे कोई नहीं, और गांव आदि में जो बहुत पढ़ेगा वो 8वीं क्लास तक, इसके ज्यादा नहीं। तो अंग्रेजों की नीति भी थी कि यहाँ एजुकेशन का बहुत विकास न किया जाए, नहीं तो ये शिक्षित हो के हमें निकाल सकते हैं यहाँ से, शिक्षित होंगे तो ज्ञान बढ़ जाएगा ना, निकाल देंगे। तो बहुत मीटिंग करने के बाद उन्होंने कुछ किया, दोबारा उसका इंग्लिश में पेपर लिया, उसको कुछ हिंट दे दिए, कुछ प्रोफेसर लगाए, भाई इसको तैयार करो पास करके, फिर उसको गोल्ड मेडल दिया गया। तो सब चारों सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में हमारे नंबर बहुत आ जाएं, लेकिन दूसरे में हम बिल्कुल ढीले रह जाएं, तो बाबा ने ये रहस्य बताया हुआ है चार सब्जेक्ट में, जो असरतन है उनके चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स 90% से ज्यादा, जो फर्स्ट क्लास हैं उनके फर्स्ट क्लास माना 108 रतन, ये अव्यक्त मूल्यों में है सब, 77, 78 इन मूल्यों में है ये सब। जो विजय रतन है फर्स्ट क्लास उनके चारों सब्जेक्ट में 60 से ज्यादा, किसी के 75 भी होंगे, किसी के 80 तक भी होंगे, उनके नंबर आगे। और जो त्रेता के हैं, त्रेता के विश्व महाराजन, उनके दो सब्जेक्ट में फुल नंबर और दो सब्जेक्ट में पास मार्क्स से भी नीचे, जिसको फेल कहते हैं। कौन से दो सब्जेक्ट में फुल? सेवा और ज्ञान में, और धारणा और योग में फेल। बाबा ने ये बात साकार में स्पष्ट कर दी थी, राम फेल हुआ, इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपवित्र हो गया, योग में फेल हुआ, योग में कच्चा रह गया, और धारणाएं योग से जुड़ी हैं, अहम रह गया, निरंकारी नहीं बन पाए, संपूर्ण पवित्र नहीं बन पाए, सरल चित सहनशील नहीं बन पाए। तो हमें चारों सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा ध्यान देना है। ज्ञान, ज्ञान हमारे लिए बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। हम मुरली यहां बैठ के भी सुनते हैं रोज, और स्पीकर पे अपने कमरे में भी सुन सकते हैं। अनुभव होंगे सबको दोनों के कभी ना कभी, कौन सा अच्छा लगता है? मुझे भी कभी कभी स्पीकर पे सुनना पड़ जाता है, कभी मुझे कुछ विशेष लिखना हो, कुछ विशेष काम हो गया हो, तो मुझे मुरली वहीं सुन के लिख देना पड़ता है, वो काम कर देना। कभी कभी, नॉर्मली मैं ऐसा नहीं करता हूँ, पर दो चार मास में एक बार तो मैं देखता हूँ। मुरली तो सब सुन ली, मुझे याद भी है क्या क्या मुरली थी, लेकिन जो रस, जो सुख यहाँ बैठ कर मिलता है, वो केवल सुनने से नहीं मिलता। और कुछ लोग केवल घर में पढ़ते हैं, आप में से जो पढ़ते हो कितने मिनट में पढ़ जाते हैं मुरली? अधिक से अधिक 15 मिनट में, एक पेज 5 मिनट में फटाफट पढ़ दी, ताकि अटेंडेंस लग जाए बाबा के पास के मुरली पढ़ी, क्या पढ़ा ये शायद याद रहे। मैं बहुतों से पढ़ने वालों से पूछा करता हूँ, फोन पे कभी कभी लोग बात करते हैं इस बारे में कि मुरली में हम नहीं जा सकते, घर में पढ़ लेते हैं। मैं उनसे पहला प्रश्न ही पूछता हूँ, कितने मिनट लगाते हो पढ़ने में? तो कोई कहता है 10 मिनट लगाते हैं। एक भाई की स्पीड इतनी फास्ट, वो 5 मिनट में 3 पेज पढ़ जाता है। कुमार है, वो साइंटिस्ट है, उसकी स्पीड ही फास्ट है, वो तो सत्य है, पर इससे मुरली का सुख तो नहीं मिलेगा ना। मुरली तो सुख देती है ना हमें, भगवान हमसे बात करता है, उसकी फीलिंग यहाँ क्लास में सम्मुख बैठकर ही हमें अच्छी आती है, गुड वाइब्रेशंस में बैठकर। तो मुरली में रस लेना, ये नहीं कि मुरली को 5-7 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। कोई कोई ऐसा भी सोच लेते हैं, भाई बाबा ने भी कह दिया मुरली 5 बार पढ़ूं, अब वो किसे कहा था ये तो पता नहीं। कोई बाबा के पास ऐसा बैठा होगा जिसकी बुद्धि थोड़ी कमजोर होगी, तो कह दिया 5 बार पढ़ा करो तो कुछ तो याद रहेगा, लेकिन देखा ये गया होगा कि 5 बार पढ़ के भी उसे कुछ याद नहीं रहता। ऐसे भी कई महारथी होते हैं। एक कोई आत्मा मुझे फोन कर रही थी अब 4-5 दिन पहले ही, कि मेरे साथ ये समस्या है, मैं मुरली बहुत अच्छी तरह पढ़ लेती हूँ, क्लास में भी सुनती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता। इसके कई कारण और भी हो जाते हैं, लेकिन हम ये ध्यान दें, हमें मुरली को एंजॉय करना है। 1 घंटा हम यहाँ के बैठते हैं तो 1 घंटा हमारे लिए ऐसा हो जैसे हमने बहुत अच्छी खुराक खा ली, रोज आत्मा तृप्त हुई। ये ज्ञान का चिंतन हमारे व्यर्थ चिंतन को समाप्त कर देता है। न जाने मुरली में कौन सी ऐसी बात होती है जो हमारे ब्रेन को खोल दे, जो हमारी बुद्धि को चमत्कारिक बना दे, जो हमें खुशी दे दे, जो हमें नशा चढ़ा दे। तो यहां बैठकर ही मुरली का रस लेना, मुरली का मनन करना, और ज्ञान में ज्यादा नंबर उनको मिलेंगे जो स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। कल की बात याद करो, कल की मुरली में दो बातें इसी में, ऐसे दीदी होंगे तो विश्व को शांति का दान मिलेगा, और अगर सुखों का दान देना हो तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो। दोनों गहरी बातें हो गई ना। स्वदर्शन चक्र घुमाने से ऐसे वाइब्रेशंस फैलेंगे कि संसार को सुखों का दान मिलता रहेगा। तो ज्ञान में हमें नंबर मिलते हैं, ये तो हुआ ज्ञान चिंतन, ज्ञान सुनना। स्वदर्शन चक्र घुमाने से क्या होगा, ज्ञान की जीवन में धारणा होगी, आत्मा ज्ञान स्वरूप बन जाएगी, जो कुछ ज्ञान है वो हम हो जाएंगे। ये है ज्ञान में फुल मार्क्स। योग में फुल मार्क्स, मेरा तो एक शिव बाबा। ये थोड़ी कठिन बात है भाई, है नहीं या सहज है, बहुत है ना संसार में मेरे। अब कोई माता कहे चार बच्चों की माँ और कहे मेरा तो एक शिव बाबा, बच्चे कोई नहीं मेरे, चलेगा? बताओ माताएं, गाया तो जा सकता है पर ये प्रैक्टिकल तो नहीं होता ना। योग युक्त जीवन बनाना, योग को जीवन का अविनाशी अंग बना देना, बाबा को अपने साथ ऐसे ही जोड़ लेना, उसमें एक जैसा हो जाए हम, जैसे किसी विशेष काम में हम कभी बिजी होते हैं। छोटी सी बात देखो, आपके घर में कोई काम हो रहा हो विशेष, मान लो बच्चे की शादी है, दो चार दिन दस दिन कैसा रहेगा चिंतन, सारा वही 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 वही। ऐसे ही बाबा ऐसा हो जाए हमारे साथ कि उसका चिंतन, उसकी याद, उससे प्रेम, उससे रुधिहान, ये चलता ही रहे, जैसे हम लगातार उससे जुड़े रहें। ये होगा योग में फुल मार्क्स। और फुल मार्क्स लेने के लिए, ये होगा योग में अच्छे मार्क्स। फुल मार्क्स लेने के लिए वही एक बात सबको याद रखनी पड़ेगी, बुद्धि को जहां चाहे, जैसा चाहे, जितना समय चाहे स्थिर कर सके। जो बाबा ने अभी होमवर्क दिया, स्वराज्य अधिकारी, अपने पर राज हो गया, अपनी मन बुद्धि को जहां चाहे स्थिर कर दें। पांच मिनट करना चाहे पांच मिनट, दस मिनट करना चाहे दस मिनट। मान लो हम अपने भविष्य के देव स्वरूप का आनंद लेना चाहते हैं तो हम ले सकें। मान लो हम अपने फरिश्ते स्वरूप को लंबा समय देखते रहना चाहते हैं, उसमें स्थित होना चाहते हैं, उस स्वरूप की अनुभूति चाहते हैं दस मिनट, तो हम कर सकें। हमारे विचार बदल न जाए, डाइवर्ट न हो जाए। ये है योग में फुल मार्क्स लेना। तो जितना जितना कम योग, देखो मैं एक छोटी सी बात आपको सुनाऊं। अभी दो चार दिन में मुझे कई जगह से ऐसे फोन आए, उन्होंने कहा हमारे पास ये समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या, ये हो गया वो हो गया, उसने मेरे से ऐसा कर दिया, उसने मेरे से ऐसा कर दिया। कहा मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, मैं बहुत अच्छी, पता नहीं है मेरे से ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, उनकी सब बात तो सुन ली पहले ताकि वो हल्के हो जाए, योग कितना है सारा दिन? तो एक दो ने तो खुला बोल दिया, योग तो लगता ही नहीं, योग नहीं लगता हमारा, सेवा हम बहुत करते हैं, समझाते हैं सबको बहुत अच्छी तरह, कोर्स भी देते हैं, लेकिन हमारा योग नहीं लगता। तो समस्याओं का कारण क्या हो गया, योग न लगना। योग न लगने से इम्प्योरिटी इमर्ज होने लगेगी, योग न लगने से दबे हुए संस्कार बाहर निकलने लगेंगे और समस्याएं दिखाई देंगी। हमारी योग की साधना ही तो हमें पावन करेगी ना, हमारी योग की साधना ही तो हमें कर्मातीत बनाएगी, हमारे संस्कारों को बदलेगी, जो आत्मा में गंदगी भर गई उसको स्वच्छ करेगी। अगर योग ही नहीं तो शिकायतें ही शिकायतें होंगी। सब ध्यान दें, योग में भी हमें बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। तीसरा सब्जेक्ट हमारा धारणाएं। धारणाओं पे हम कुछ धारणाओं पे ध्यान दें, कुछ हमारी धारणाएं ऐसी हैं जो बहुत ऊंचे लेवल की हैं, कुछ धारणाएं ऐसी हैं जो रोज के जीवन में हमें काम आती हैं, जिनसे रोज का हमारा नाता है। कौन सी धारणाएं हैं रोज के नाते वाले, बोलो। नहीं, ये स्नान करना खाना पीना ये छोटी धारणा। संबंधों में सहनशील होना, सरल चित्त होना, सुभावनाएं रखना, मधुर भाषी होना, एक दूसरे को साथ देना, ये हमारी व्यवहार में आने वाली धारणाएं। और योगियों की और अच्छी श्रेष्ठ धारणाएं कौन सी? उपराम वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, साक्षी भाव, वैराग वृत्ति। ये धारणाएं सर्वोच्च उच्च कोटि की है, ऊंचे लेवल की है, जिन पे थोड़े ही पुरुषार्थियों का ध्यान रहता है। इनका संबंध योग से, योग का संबंध इनसे। जितना जो अनासक्त है, उपराम है, उतना ही उसका योग अच्छा लगता है, और योग अच्छा लगने से और हमारी बुद्धि यहाँ से निकलती जाती है, हमें यहाँ के सुख क्षण भंगुर महसूस होने लगते हैं, असली सुखों का आभास होने लगता है। तो इन धारणाओं पर भी हम ध्यान दें। पर एक बहुत प्रैक्टिकल धारणा जो बाबा के पास थी, आप सब उसे अच्छी तरह जानते हो, निरहंकारिता। निरहंकारी जो बाबा की तीन विशेष बातों में से एक है ना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। अगर हम और कुछ भी न सोचे, इन तीन चीजों में सब धारणाएं आ गई, योग भी आ गया, सेवाएं भी आ गई। निर्विकारी, जहां निर्विकारी स्थिति आ गई, सेवा पीछे पीछे भागेगी। निराकारी स्थिति योग की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति। योग अभ्यास करते करते हम निराकार हो जाएंगे। निराकार का अभ्यास न भी करें, मान लो फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करते हैं, हम ज्वालामुखी योग का अभ्यास करते हैं, तो ये अभ्यास करते करते हम निराकार हो जाएंगे। इस तरह इन धारणाओं पर भी हम बहुत ध्यान देंगे। विशेष रूप से जिस धारणा की हमें बहुत जरूरत रहेगी, अनासक्त वृत्ति, वैराग वृत्ति। ध्यान देंगे सभी दोनों पर, वैराग वृत्ति। अब अगर किसी को वैराग नहीं आता, राग ही राग है, तो विनाश काल में क्या होगा? ये बात आप जानते हैं, समय उनको वैराग दिलाएगा। लेकिन अंतर क्या होगा? एक तो प्राप्तियां बहुत कम हो जाएंगी, दूसरा वो वैराग्य कष्टदायक होगा। मान लो सब कुछ नष्ट हो रहा है, देखते देखते नष्ट हो गया, बहुत अच्छा मकान बनाया था, नष्ट हो गया, वैराग आएगा। लेकिन उस वैराग में दुख भी समाया होगा, मेरा सब कुछ चला गया, कोई नहीं है अपना, कुछ नहीं अपना है, ऐसी वो होगी संकल्प। लेकिन ज्ञान युक्त वैराग जो आत्मा को सुख देगा, हर जगह से बुद्धि हटी हुई, कहीं भी अटके हुए नहीं, इससे योग युक्त जीवन का सुख प्राप्त होता रहेगा। इस धारणा की, ये व्यक्तिगत धारणा किसी की हो सकती है, व्यक्तिगत रूप ही इसको देंगे कि हमें सब कुछ छोड़कर घर वापस जाना है, जो बाबा ने आखिरी मूल्य में बोल भी दिया, रिटर्न जर्नी तो बाप के साथ करनी है ना, अब करनी तो है। साकार मुरली में भी आ गया, तुम्हारे शरीरों को आग लगाकर, कैसी अच्छी भाषा बोली भगवान ने, तुम्हारे शरीरों को आग लगाकर तुम आत्माओं को वापिस ले जाऊंगा स्वच्छ करके बिल्कुल। तो देखो भगवान की ये प्लानिंग, ऐसी भट्टी जलाएगा सारे संसार में कि सबके शरीरों को आग लग जाएगी, सारा शरीर ही, सारा संसार ही जलने लगेगा ना, सारा संसार ही शमशान बन जाएगा, एक बार चिता बन जाएगी बहुत बड़ी, सबके शरीर जलने लगेंगे, सब आत्माएं वापस जाएंगी। सेवा, सेवा हमारा बहुत प्रत्यक्ष और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सेवाएं सभी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको क्या नुकसान होगा, सेवा की सब्जेक्ट में फेल, और उन्हें जन्म जन्म सेवा करनी पड़ेगी। भगवान ने यज्ञ रचकर हम ब्राह्मणों के हाथ में दिया, ये गीता में बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मा ने यज्ञ रचकर ब्राह्मणों से कहा, हे वत्सो, इस यज्ञ से तुम देवताओं को प्रसन्न करो और देवता तुम्हें मन इच्छित भोग प्रदान करेंगे। ये यहाँ की बात है संगम युग की। देवता धर्म की आत्माएं आ रही हैं ना हमारे यज्ञ में, हम उन्हें संतुष्ट करते हैं तो वो सब कुछ देते हैं ना यज्ञ में, यज्ञ को भरपूर करते हैं। हम उन्हें संतुष्ट न करें, कोई बाबा से मिलने आया हो उसे कमरा अच्छा नहीं दिया तो क्या करेगा वो, जितना उसे देना यज्ञ में उसका आधा कर देगा, है छोड़ो यहाँ तो मजा ही नहीं आ रहने में, मुझे 2000 देने तब मैं 500 ही दूंगा, बस 500 का ही तो भोजन खाया होगा मैंने, संकल्प चलने लगेंगे ना तो कमाई कट हो जाएगी। तो सेवा हमारा बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। किस सेवा से संपूर्ण मार्क्स मिलेंगे, जो दूसरों को संतुष्ट करें, सुख दें। बहुत अच्छा बोल रहे, बोलो बहने, निस्वार्थ भाव से करें। वो सेवा के भिन्न भिन्न रूप हो गए कि हम ज्ञान दें, प्रदर्शनी हम करते हैं, मेले करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, ज्ञान दे के दूसरों की मदद करते हैं, आप समान बनाते हैं, लेकिन इन सब में निष्काम भाव हो। ये नहीं हम बहुत सेवा करते हैं तो उसके रिटर्न में हमें कुछ मिलने लगे, यहाँ मांग हो गई नंबर कट गए। सेवा में नंबर किस किस से कटते हैं, स्वार्थ भाव से, मानसान की इच्छा से, अभिमान से, सेवाओं में विघन डालने से। हमेंपन विघन डालेगा ना, नहीं वो अच्छे नंबर होंगे, ये हम कटने की बात कर रहे हैं। तो इससे सेवा में नंबर कटेंगे, सच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं, अपने पन से यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। बाबा साकार में थे, एक ही बार की बात है, किसी की रिपोर्ट पहुंची, उसने कहा मेरा टाइम पूरा हो गया, अब मैं नहीं करूंगी, ये मेरी ड्यूटी थोड़ा ही है। तो बाबा ने क्या कहा होगा, ये शब्द किसके होते हैं, नौकरों के। घड़ी देखते हैं भाई 5 बज गए, अपना टाइम पूरा हो गया, सवेरे 9 बजे से शुरू किया था, 8 घंटे पूरे, अब पूरा अपना। लेकिन घर में माताएं बताएं, अगर मेहमान आ जाए रात को 10 बजे तो कहेंगे हमारा टाइम पूरा हो गया, अब क्यों आए हो, तुम्हें चाय नहीं पिलाएंगे, अब नहीं कह सकते ना, घर है वो, घर में टाइम नहीं होता, घर में ड्यूटी नहीं देखी जाती। हम भी यहाँ अपनेपन से, ये यज्ञ हमारा है, इस भाव से यदि सेवा कर रहे हैं तो इसके नंबर बहुत ज्यादा मिलते हैं। एक बार की मुझे याद है बात, अव्यक्त बाबा कमरे में आए अपने, मधुबन वाले मिल रहे थे, तो एक ने प्रश्न पूछा, आप उसे कम लोग जानते होंगे, शिव कुमार है जो आजकल दिल्ली पांडवन में रहता है, उसे बाबा शिव बालक कहते थे, तो गाय संभालता था। उस दिन बाबा की मुरली में था कि ये शिव बालक तो बाबा से भी निडर है, गायों के बीच चला जाता है, बाबा आते थे तो गाय सींग हिलाने लगती थी ना, लेकिन उसको देखते ही तो शांत हो जाती थी, क्योंकि वो उनको रोज घास डालना, उनका दूध निकालना, सब कुछ करता था ना, तो उससे वो गाय भी होमली हो गई थी। तो उसने बाबा से पूछा, छोटा ही था वो तब, बिल्कुल शुरू की बात है, हम जितने भी यज्ञ वाले थे 15 होंगे ज्यादा बैठे थे बाबा के आगे, बाबा से पूछा कि बाबा हमारी यज्ञ में धन की सेवा कैसे होगी, हम तो धन देते नहीं यज्ञ में। तो बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था, धन जो बाहर से दे रहे हैं उनको यदि तुम सफल करते हो, उसमें यदि तुम बचत करते हो, तो जो बचत हुई वो तुम्हारे नाम से जम जाता है, और किसी ने नुकसान कर दिया तो वो उनके नाम से माइनस हो जाता है। बहुत अच्छी बात ये बाबा ने सिखाई थी। तब तो यज्ञ में इकोनॉमी का समय था, यज्ञ संपन्न नहीं था, गरीबी था, बल्ब भी कहीं जल रहा है व्यर्थ, तो सबका कर्तव्य होता था उसे बंद करना, नौकर मिनिमम कम से कम नौकर यज्ञ में थे, बस दो सफाई करने वाली सारे यज्ञ की और दो बर्तन साफ करने वाली, एक दो कोई और, बाकी नहीं कोई भी। सभी काम सबको हाथ से करना था, बाबा बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते थे, तो हम सभी चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान दें। क्लियर है ना सबको? ऐसे नहीं भाई हमने तो योग कर लिया, मुरली का क्या करना है, हम तो सवेरे उठ जाते हैं, अब मुरली में क्या है। लेकिन चारों सब्जेक्ट हमें एक साथ उड़ाएंगे, चारों सब्जेक्ट का बल हमारी स्थिति को महान बनाता है। एक सब्जेक्ट का बल नहीं, ये अंडरलाइन करने वाली बात है। कभी मैंने भी बाबा से पूछी थी ये बात, बाबा से पर्सनली मिलते थे बहुत हम लोग, तो बाबा ने मुझे कुछ कहा और मैंने पूछा, बाबा योग ही तो मुख्य सब्जेक्ट है, आप ही तो कहते हो, फिर बाकी सब की क्या जरूरत है? तो बाबा ने कहा नहीं, चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने वाले ही पास विद ऑनर होंगे। तब से मुझे बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। तो सभी सेवा के बल पर भी विशेष ध्यान दें। सेवा हमारा सब्जेक्ट ही नहीं, सेवा बहुत बड़ा बल भी है। जब हमारे यहाँ यज्ञ में डॉक्टर नहीं होते थे, जब यज्ञ में पैसा नहीं होता था दवाइयों के लिए, दवाइयां ही नहीं होती थी, तब बाबा हम सबको कहते थे योग बल से बीमारियों को ठीक करो। और हमारे क्या अनुभव होते थे? मेरे अनुभव हैं बहुत बार के, सेवा करने से बीमारियां ठीक। मुझे अगर बुखार चल रहा है तो कोई और नहीं होता था जो मुझे छुट्टी दे के तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जगह काम कर लेता हूं, मुझे ही करना था। अनुभव ये होता था, आग के पास आए बुखार में, वहीं पसीना आया, वहीं बुखार ठीक हो गया। दवाई की तो बात ही नहीं थी, पैसा नहीं था यज्ञ में। तो सेवा हमें बल बहुत देती है, ये बात हमें भूलना नहीं है। सेवा का बल योग बल को बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करता है। ओम शांति।
कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी।